शास्त्रों को भगवान ने ज्ञान दिया इसीलिए कि सब लोग उनका अनुसरण करें, जनता को सिखाने के लिए उपदेश दिए और अब स्वयं अपना देश अपना घर छोड़ दिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भावने एवं अभी जब अपने घर पर थे उसी समय भावने एवं उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह, घर पर थे तभी उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह, केवल शरीर संग्रह था उनका, परिग्रह मतलब संग्रह, केवल शरीर मात्र था और कुछ भी संग्रह नहीं किए, शरीर मात्र परिग्रह यही केवल अपने पास बचा था, शरीर मात्र। और शरीर पर क्या वस्त्र नहीं था, कुर्ता या धोती कुछ लगाए थे नहीं, गगन परिधान, गगन आसमान आकाश को पहने थे अर्थात नग्न हुए, शरीर मात्र, मात्र का अर्थ केवल, केवल शरीर भरता है। जो भगवान अब भक्ति ज्ञान वैराग्य सिखाने के लिए और विशेष करके उपशम शिला नाम जिनका अंतःकरण बिल्कुल शांत है, भोग आदि की कामना नहीं है और जो कर्मों को त्याग चुके हैं, उपरत कर्मणाम महामुनि नाम, और जो महामुनि हैं परम मननशील, जो केवल भगवान के रूप गुण लीला आदि को बोलते हैं और कुछ नहीं सोचते, तो उनको महामुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ है साधारण मौन रखने वाला, जो उचित बात बोलता है और बाकी सांसारिक वार्ता के लिए मौन होता है तो उसको मुनि कहते हैं। और जो भगवान का नाम बोलता है, भगवान की लीला बोलता रहता है, केवल भगवत संबंधी बातों का चिंतन करता है तो वो महामुनि कहलाता है। तो महामुनियों के, परमहंसों के धर्म को बताने के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं। तो अब गृहस्थी का त्याग करके परिव्राजक हो गए, परमहंस धर्मम उपशिक्ष माणा, परमहंस आश्रम के धर्म को सिखाने के लिए सिखाते हुए, इसका अर्थ यह है जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य मुख्य है। परमहंस आश्रम संन्यास की चरम अवस्था को कहते हैं। परम का अर्थ है अंतिम और हंस का अर्थ होता है हंस, परम हंस वो है जो इस प्राकृत जगत को त्याग देता है और भगवान के नाम गुण लीला आदि को ग्रहण करता है। जिस प्रकार पानी में मिले हुए दूध को हंस ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है, पानी में मिले हुए दूध को ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो ऐसे जीव को, जलचर जीव को पक्षी कहते हैं, हंस कहते हैं। इस संसार को भगवान ने सब प्रकार की वस्तुओं से रचा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता, इस जगत में जड़ भी है चेतन भी है, जैसे जीवात्मा और जड़ शरीर है। इसी संसार में भगवान ने गुण दोष की रचना किया। इसी संसार में खल भी हैं, दुष्ट भी हैं और सज्जन भी हैं। इसी संसार में भांग भी है और तुलसी भी है। तो जो तुलसी को ग्रहण करते हैं और ये भांग बीड़ी सीढ़ी छोड़ देते हैं, उनको हंस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो दोषों का त्याग कर देता है और भगवान के नाम को ग्रहण करता है, भगवान के रूप को, उसको परमहंस कहते हैं। तो परमहंसों का क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान परमहंस आश्रम को स्वीकार किए। भगवान ऋषभ देव को कोई आवश्यकता नहीं है कि वे सन्यासी बने, लेकिन अन्य सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए और वैराग्य की शिक्षा, भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए, परमहंस आश्रम के धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ने गृहस्थी का त्याग किया। तो त्याग किए तो केवल शरीर मात्र रखे थे और कुछ भी नहीं, कोई अटैची या कोई कपड़ा, कुछ नहीं। कुछ कपड़ा भी नहीं, केवल शरीर मात्र। और घर पर ही, अभी घर पर थे तभी सब कुछ त्याग दिए। ये बहुत बड़ा त्याग है। घर पर भवने एवं उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह, घर पर थे तो शरीर मात्र, शरीर केवल रखे थे, कोई वस्त्र नहीं, कोई बर्तन नहीं। आजकल तो कोई भी व्यक्ति त्याग करेगा तो कितना कर सकता है। धूप लग रही हो, बहुत गर्मी है तो जूता कम से कम लगा लेगा। ये शरीर मात्र संग्रह नहीं है, जूता, जूता एक फालतू चीज है। जूता लगा लेना, टोपी लगा लेना, कुर्ता लगा लेना, जैकेट लगा लेना, ये अधिक हो गया। भगवान शिक्षा दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान विशेष करके परमहंसों को, सन्यासियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो शरीर भी भार है आत्मा के लिए, लेकिन शरीर मात्र संग्रह रख सकता है कोई। भगवान ने केवल शरीर रखा, गगन परिधान। तो प्रश्न होता है कि ये पहनते क्या थे, तो आकाश पहनते थे, इसका मतलब नग्न रहते थे। नग्न। भगवान ऋषभ देव के इस आचरण को कुछ मूर्ख लोग धारण करते हैं, इनका आचरण पूरा ग्रहण करने लायक नहीं है, सुनने लायक है, कीर्तन करने लायक है, लेकिन अनुकरण करने लायक नहीं है। जो भगवान अभी घर पर थे तो नग्न रहने लगे पागल की तरह, उन्मत्त ही वह उन्मत्त की तरह रहते थे। प्रकीर्ण कैसा, बाल संवारते नहीं थे, बाल बिखरे रहते थे, ऐसा लगता था कि इनका भूत पीछा कर रहा है, भूत लग गया है। गृहित मौन व्रत और चुप रहने का, नहीं बोलने का व्रत ले लिए। कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता था तो बोलते नहीं थे, कहाँ जा रहे हैं, आपको भूख लगी है क्या, तो कुछ भी बोलते नहीं थे। इस तरह राजा होकर के भी राजमहल में पागल की तरह रहना और कुछ बोलना नहीं, बाल नहीं संवारना, वस्त्र नहीं पहनना, ये भगवान ने आचरण से शिक्षा दिया परमहंसों को। और घर से निकल गए, कई लोग पूछते थे, मंत्री, अपने स्वजन, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, केवल एड्रेस बता दीजिए। नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, केवल प्रारंभ में उन्होंने राजर्षि भरत को धरणी पालनाय, पृथ्वी के पालन के लिए राजा बना दिए, और राजा बना करके घर से निकल गए और पृथ्वी पर घूमने लगे। कहाँ जा रहे हैं बताते नहीं थे, क्या नाम है कुछ नहीं बताते, जड़ मूक बधिर की तरह थे। कोई कुछ भी बोलता था, अरे मूर्ख, अरे जड़, अरे गुंगा, अरे बहरा, तो लोग समझते थे सब इंद्रियां खत्म है, कान भी काम नहीं कर रहा है, जीभ भी काम नहीं कर रही है, और देखते हुए भी देखता नहीं है, अंधे की तरह चलता है। तो आंख होते हुए भी दृष्टि शक्ति पूरी है, फिर भी भगवान अंधे की तरह चलते थे, अंधे की तरह, बहरे की तरह, मूक की तरह, इस तरह रहने लगे जैसे कोई पिशाच लग गया है उनको, कोई भूत लग गया है। जब घूमना प्रारंभ किए तो तत्र तत्र अगला श्लोक में है, पूरा ग्राम आकर खेत खरवट बाटी शिविर ब्रज घोष से घूमने लगे। घूमने में कभी कोई बहुत बड़ा नगर पड़ता था तो नगर में भी जाते थे, और गांव गांव कहते हैं बाजारहीन बस्ती, जहां कोई मार्केट ना हो बाजार ना हो तो उसको गांव कहा जाता है। आकर और बहुत सी खाने जहां तहां थी तो उन खानों में जाते थे, खेत खेत कहते हैं किसानों की बस्तियां, खेती करने वाले लोगों के बीच चले जाते थे। और खरवट खरवट कहते हैं जो पर्वत के प्रांत में नीचे गांव रहते हैं, पर्वत के मूल प्रदेश में जो गांव बसे रहते हैं वो खरवट कहलाते हैं। तो भगवान ऋषभ देव चले जाते थे खरवट, और शिविर सेना की छावनियां जहां तहां रहते थे तो वहां भी चले जाते थे। और ब्रज गऊओं के स्थान, गऊएं जहां रहते थे वहां चले जाते थे। और घोष जहां अहीरों की बस्तियां थी उसमें चले जाते थे। सार्थ और कभी कभी कोई यात्रा निकलते थे, यात्रियों के झुंड में हो जाते थे, ऐसे मग्न पागल की तरह। लोग समझते थे कि ये जड़ व्यक्ति है, गूंगा है, बहरा है, तो लोग साथ में ले लेते थे, पूछते थे क्या हमारे साथ चलोगे, तो भगवान बोलते नहीं थे और चलते थे बस। यात्राएं कभी कभी निकलती है ना, जैसे ब्रज में निकलती है, मायापुर में निकलती है, तो यात्रा में ऐसे अकस्मात आ जाते थे। तो जहां तहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं मनुष्यों में, अमनी चराप सदै, दुर्जन लोग किसी पागल को देखकर या गूंगे अंधे बहरे को देखकर उसे तंग करते हैं, तो भगवान ऋषभ देव पृथ्वी पर घूम रहे थे, कहीं कहीं बहुत दुर्जन मिल जाते थे, तो भगवान को तर्जन ताडन कभी कभी बहुत धमकाते थे, इधर क्यों आया, चलो भागो, तर्जन भय उत्पन्न करने वाले शब्द बोलते थे, मारने की धमकी देते थे, और कुछ लोग तो ताडन मारने लगते थे। तो छड़ी से बेंत से या किसी चीज से मारने लगते थे, इधर क्यों आया, ये पागल आ गया, नंग धड़ंग ऐसे क्यों आ गया इधर। तर्जन ताडन और मेहन, कभी कभी तो दुष्ट लोग खड़े खड़े पेशाब कर देते थे भगवान ऋषभ देव पर, और मेहन और कई लोग निकट आने से बहुत घबराते थे, ये पागल है, बहुत गंदा है, तो लोग दूर से पत्थर मारते थे भगवान को, ग्राह पत्थर मारते थे, और कुछ लोग मल उठाकर फेंक देते थे भगवान पर सक्रिय, और कुछ रजह प्रक्षेप, और धूल उठाकर फेंकते थे, मल उठाकर फेंकते थे। और पूती बात, भगवान बैठे हैं और वे अधोवायु छोड़ देते थे, दुरुक्त है, कुछ लोग बहुत बुरा शब्द बोलते थे, गाली देते थे, ये चोर आया है, ये रात को चोरी करेगा, ऐसे दिखा रहा है कि मैं गूंगा हूं बहरा हूं, जो बुलवाने का बहुत प्रयास करते थे लेकिन भगवान बोलते नहीं थे, और ये सब सहते थे। भगवान ऋषभ देव का शरीर आध्यात्मिक शरीर है, चिन्मय, इसलिए शरीर में उनकी आत्मबुद्धि नहीं थी, जैसे अन्य मनुष्यों की होती है कि मैं यह देह हूं और देह से संबंधी पदार्थ मेरे हैं, ऐसी बुद्धि भगवान की नहीं थी। जब देह में अहम बुद्धि नहीं है और मम बुद्धि नहीं है, तो वे इस प्रकार के कार्यों से अविखंडित मना, भगवान का मन कभी क्षुब्ध नहीं होता था। तो क्षुब्ध मन उसका होता है जो शरीर को मैं मानता है और शरीर के संबंधियों को मेरा मानता है। भगवान कहीं जाते थे और कोई कुछ भी करता था तो उनका मन अविखंडित रहता था, कभी किसी पर क्रोध नहीं, कभी किसी की चिंता नहीं, कभी किसी से कोई कामना नहीं, भगवान सब तरह से परिपूर्ण है। इस तरह जिन पर धूलि फेंका जा रहा है, गाली दिया जा रहा है और पत्थर फेंका जा रहा है, फिर भी भगवान का मन अविखंडित रहता था। जैसे संसारिक लोगों का मन क्षण क्षण में बदलता रहता है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, सब होता रहता है, कभी निद्रा आ जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन भगवान का मन एक समान था, उनमें मन और शरीर का कोई भेद नहीं है, ये तो केवल अन्य परमहंसों को ऐसा होना चाहिए, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। जो किसी भी परिस्थिति में भगवान शांत रहते थे और परमहंसों को शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह से सांसारिक स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, ये होता रहता है। कभी भोजन न मिले और फिर भी मन उद्विग्न ना हो, या कभी अच्छा मिल जाए तो उसके चलते हर्षित ना हो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं हमारा भक्त न हृष्यति न सोचति न कांक्षति, कोई अनुकूल पदार्थ पा करके न हृष्यति हर्षित नहीं होता, और कोई चीज नहीं मिला तो न सोचती और न और चीज के लिए कांक्षति, कांक्षा नहीं करता। कुछ मन के विपरीत हो गया तो न सोचती, शोक नहीं करता। हर्षा मर्ष भयोद्वेगय मुक्तो, हर्ष अमर्ष भय आदि उद्वेग से जो मुक्त है, और मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। परमहंस भक्तों के कर्तव्य को भगवान सिखा रहे हैं। यद्यपि हम लोग पूर्ण रूप से भगवान ऋषभ देव का अनुकरण नहीं कर सकते, फिर भी कुछ वैसा आचरण करना चाहिए। तो ऐसा करते करते योग का आचरण करते करते भगवान के पास बहुत सिद्धियां आई, जैसे बह्यास आकाश मार्ग से चलना, या मन के वेग से शरीर को ले जाना। जितना मन जल्दी जाता है जितना फास्ट, जैसे यहां हम बैठे बैठे एक सेकंड में दिल्ली जा सकते हैं और लौट आ सकते हैं, तो इस तरह से मन जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से शरीर चलाने की शक्ति आ गई, शरीर जा सकता है। और अलक्षित सूक्ष्म बन करके छोटा बन करके जा सकता है, दूर की वस्तु को ले सकता है। इसको दूर ग्रहण सिद्धि कहते हैं। बहुत प्रकार की सिद्धियां आई और भगवान से हाथ जोड़ करके कहते थे हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन भगवान ने मन से भी उसका आदर नहीं किया। यह शिक्षा बहुत सुंदर है। योग सिद्धि मिलती रहती है, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग या कर्म योग, सब जगह सिद्धियां मिलती हैं। भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, भक्ति करने से कुछ सिद्धियां अपने आप मिलती हैं, जैसे छोटे छोटे सिद्धि। कुछ लोग प्रणाम करने लगते हैं, ये भी योग सिद्धि है। लोग समझते हैं कि साधु हैं सन्यासी हैं तो प्रणाम करने लगते हैं, तो प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए, मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, और शरीर से तो स्वीकार क्यों करेंगे। सिद्धियां योग को खत्म कर देती हैं। बहुत पैसा मिलना है भी एक सिद्धि है। योग सिद्धि का मतलब केवल ये अष्टांग योग करने वाले सिद्धि प्राप्त करते हैं ऐसी बात नहीं है। वैराग्य जिसमें है, भक्ति है, ज्ञान है, तो उसकी कुछ पूजा होने लगती है, आदर होने लगता है। साधक को अपने जीवन में इन खतरनाक सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो भक्ति में मन नहीं लगता है, फिर उन्हीं सफलताओं में मन आविष्ट हो जाता है। अतः शुरू से ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई मान देता है, मान देने वाला तो लाभ हो जाता है। प्रणाम करने वाला साधु महात्मा को हमेशा लाभ में रहता है। तो प्रणाम करेगा उसको कुछ आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जिसको प्रणाम किया जाता है उसको हमेशा हानि है, उसको कोई लाभ नहीं। इसीलिए प्रणाम आदि को स्वीकार नहीं करना चाहिए, शरीर से और मन से भी। मन में कभी कामना नहीं होनी चाहिए कि हमको लोग प्रणाम करें। अगर एक कामना हो गई तो कहां कहां प्रणाम करेंगे लोग, मन विखंडित होगा ही। यदि आप किसी मंदिर में गए तो मान लीजिए वहां पर 100-200 आदमी प्रणाम कर रहे हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो मन वही जोड़ेगा, वहां इतना वार्म रिसेप्शन होगा और यहां इतना फीका क्यों हो रहा है। तो कहां भगवान का चिंतन होना और कहां अपना चिंतन होने लगता है। या तो भक्तों के प्रति अश्रद्धा होती है, ये नालायक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, यहां के लोग प्रणाम करना नहीं जानते हैं, ये सोचेगा मन। और मन जहां इस तरह के विचार में आया तो वहीं पर भक्ति गायब। इसीलिए भगवान ने कहा है अमानिना, मान देना। मान देना, मान देना चाहिए, लेकिन अमानिना स्वयं मान न चाहे। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। और ऐसी योग्यता जब होगी तब सदा कीर्तन हो सकता है। सदा कीर्तन के लिए अमानी होना जरूरी है और मान देना दूसरों को, लेकिन स्वयं मान न चाहना। भक्ति करने पर तो मान मिलेगा ही, लेकिन मान को स्वीकार नहीं करना। भगवान ऋषभ देव के पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां आई, कहते थे हमें स्वीकार कर लीजिए, हमको धन्य कीजिए, लेकिन भगवान ने मन से भी उनको स्वीकार नहीं किया। भगवान ऋषभ देव चाहते तो एक सेकंड में बॉम्बे जैसा नगर बस जाता है, बहुत बड़ा आश्रम खोल देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं नहीं स्वीकार किया। छठवें अध्याय के शुरू में महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, सिद्धियां उनका क्या बिगाड़ सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया। इसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिए हैं छठवें अध्याय में। चाहे ज्ञान योग हो या भक्ति योग, किसी भी क्षेत्र में कोई पुरुष यदि उन्नति करेगा तो उसको सिद्धियां मिलेंगी। उन्नति की बात छोड़ दीजिए, केवल योगी बन जाए, केवल भक्त बन जाए तो उसको सिद्धि मिलती है। ये भी सिद्धि है ना कि लोग खिलाने के लिए बुलाते हैं। अगर भक्त बन गए तो लोग बुलाते हैं कि आइए खाइए, और खाने के कारण आपको फीस दिया जाएगा, कुछ दक्षिणा भी देंगे। संसार में ऐसा कहाँ है कि आप किसी होटल में खाइए और खिलाने वाला आपको दे। लेकिन भक्त होने पर भोजन भी मिलता है और भोजन करने का फीस भी मिलता है, ये भी एक सिद्धि है। तो इसी तरह से अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। पर योगी को चाहिए कि इन सिद्धियों को ठुकराया करें, स्वीकार नहीं करें। तो भगवान ऋषभदेव सिद्धियों को स्वीकार नहीं किए। महाराज परीक्षित कहते क्यों नहीं स्वीकार किए, उनका क्या बिगड़ रहा था। तब सुखदेव जी उत्तर देंगे, हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद।
कृष्ण धन्यवाद महाराज जी। मैं पूछा था एक प्रश्न जो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से मैं जानना चाहता हूँ कि 7/28 में भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ऐसा तंतु गतम पापम जाना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विनूर मुक्ता भजते मान दृढ़वता। तो जो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं पापों से, वो मेरी दृढ़ता से भजन करते हैं। और तो हम दृढ़ता से भजन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अभी तक पाप गया नहीं। फिर कहा भी जाता है कि एक नाम भगवान का सारा पाप मिटा देता है, तो इस बात को मैं अभी तक समझ नहीं पाता हूँ।
जैसम तंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते नाम दृढ़वता। सत्य है कि भगवान का एक नाम सुनने से या बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे इस घर में मान लीजिए लाखों बरस से अंधकार है, लेकिन इसमें आप स्विच ऑन करेंगे, यदि बल्ब लगाए हैं और स्विच ऑन किए तो अंधकार तुरंत भागेगा। अंधकार ये नहीं कह सकता है कि मैं एक लाख बरस से इसमें रहा हूं, मैं नहीं भागूंगा। अंधकार चाहे कितना भी दिन का हो, वो स्विच ऑन होने पर वो भागेगा निश्चित। तो इसी तरह से पाप तभी तक हैं जब तक भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता है या कान में नहीं आता है। तो नाम लेने से या सुनने से पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं।
जो दृढ़ता से भगवान ने बताया, दृढ़ होकर भजन करते हैं कभी, तो हमारे ऐसा क्यों नहीं होता है फिर?
भगवान तो गीता में बताते हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, पाप नष्ट हो जाता है। जो भगवान का भजन करते हैं उसके पहले ही पाप नष्ट हो जाता है। अगर पाप रहेगा तो नाम का उच्चारण नहीं हो पाएगा। पाप नष्ट हो गया है इसी से नाम का उच्चारण होता है। जिसमें बहुत पाप है उसके द्वारा नाम का उच्चारण नहीं हो सकता है। नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि जा करके सबसे हरिनाम की भिक्षा मांगिए। और एक समय हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि अच्छा, नाम बोलने से सबका उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो नहीं बोलते हैं उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो नहीं बोल सकते तो कम से कम सुन सकते हैं, तो सुनने से उनका उद्धार हो जाएगा। तो ये तो बात सत्य है कि भगवान का नाम बोलने से और सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
हरे कृष्ण। अपने अपने तीन शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो अपने अच्छे और बुरे कर्म ये तीनों शरीर में से कहाँ जमा होते हैं ताकि वो आगे जाके प्रकट होते हैं, अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल? तो कहीं ना कहीं तो उसका संग्रह होता होगा जो भी हम कर रहे हैं।
सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर कर्मों से बना है, कर्म का पुंज। तो जो हम कर्म करते हैं तो कर्म तो इस स्थूल देह से करते हैं, ये शरीर यहां मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वो कर्म से बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो मुख्य रूप से मन बुद्धि अहंकार से बना है वो रहता है। और जीवात्मा उसी देह के साथ फिर दूसरे देह में जाता है, चाहे स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। वो सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है। यह शरीर मरने के बाद भी हम मन से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो जो भी पाप हैं या पुण्य हैं वो सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर भी जल जाए इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मन को सुधार लें। मन से हमेशा ये चिंतन करें कि हम कृष्ण के हैं, हम भगवान के हैं, उनका रूप, उनका नाम, उनका गुण हमेशा हमारे मन में रहे तो मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने का आशय है समस्त कर्म फल जल जाते हैं।
धन्यवाद।
हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम प्रणाम। बढ़िया लेक्चर महाराज। जैसे ऋषभदेव ऐसे भेष धारण किए है तो भगवान है, लेकिन भगवान होने के नाते भगवान का काम है कि जीव को उद्धार करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे आचरण किए जैसे कि जीव उनके प्रति द्वेष करने लगे, उनको पाप लगेगा, लेकिन फायदा क्या होगा? फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए इसलिए कि देखो लोग उनको निंदा करने लगे, गोपी को भी बोलते थे, फिर संन्यास लिए कि जीव उद्धार करने के लिए, वो तो जीव को उद्धार किए। ऋषभदेव ने ऐसे रूप धारण किए, लोग उनको निंदा किए, तो निंदा करने से उनका और पाप हुआ, तो फायदा क्या हुआ फिर? तो यहाँ पे चैतन्य महापुरुष जैसे सब घर से छोड़ के संन्यास लिए, लोग गोपी को भी बोल देते संन्यास लिए कि लोगों को उद्धार करेंगे, तो उन दोनों में थोड़ा फर्क है, थोड़ा बताइए, समझ नहीं पाए हम लोग।
भगवान परमहंसों का धर्म सिखाए, इससे भक्तों का बहुत उपकार हुआ, और जब तक ये सब लीलाएं रहेंगी तब तक भक्त सीखते रहेंगे, ये बहुत बड़ा उपकार है। और कुछ अगर तिरस्कार किए भगवान का तो वे पाप के भागी नहीं हुए, क्योंकि भगवान प्रकट थे, उनके दर्शन से भी लोगों का कल्याण हुआ। और कुछ दुर्व्यवहार किया लोगों ने तो उसको तो भगवान ने कोई ग्रहण नहीं किया, उनका स्पिरिचुअल शरीर था, इसलिए अविखंडित मना सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा कहकर के अंत में भगवान ऋषभदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जगत अज्ञान के अंधकार में था, लेकिन भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया। सुत गोस्वामी भी कहते हैं, अष्टमे मेरु दिव्यां तु नाभेर जात उरुक्रमा दर्शन वर्तम धीराणाम सर्वासम नमस्कृतम। भगवान ने धीर पुरुषों के आचरण को सिखाया, दिखाया। तो जो भी वक्ता हैं, सुखदेव गोस्वामी या श्रील प्रभुपाद, ये तो यही कहते हैं कि बहुत उपकार का काम हुआ, बहुत भगवान ने लाभ दिया। अगर भगवान यहाँ भोगी बनते, भोग भोगते संसार का, तो ये अनिष्ट है, लेकिन भगवान ने सिखाया कि संसार से अनासक्त होना चाहिए, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और मान अपमान आदि में सम रहना चाहिए। जो गीता में बोले हैं भगवान उसी को उन्होंने सिखाया। और गीता में चाहे भक्ति योग हो या सांख्य योग या कर्म योग, सब जगह ये सब गुण बताए हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान ने ऐसा किया, पाप लगा उनको या लोगों को पाप लगा, नहीं।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाराज आप बता रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा अहंकार वगैरह हो जाता है, लेकिन शुरू में जो जीव का स्वभाव है, जो भक्त को देखते हैं या गुरु को देखते हैं तो उसको प्रणाम करने की इच्छा होती है कि हम लोग प्रणाम करें। जिस तरह से भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को देखे उस तरह से, गुरु को देखे जिस तरह से प्रभुपाद ने भी हमें बताया भाई किस तरह से शुरू में भक्ति, प्रभुपाद ने लोगों को बताया भाई किस तरह से भक्ति करनी चाहिए और लोगों को प्रणाम करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बता सकते?
तो वही कहना कि प्रणाम कराना नहीं चाहिए, प्रणाम को लौटा देना चाहिए। ऐसे भी नियम है, कोई किसी को प्रणाम कहता है तो जिसको प्रणाम करता है वो भी कहता है प्रणाम, प्रणाम तो प्रणाम, वो भी लौटाना हुआ। तो प्रणाम करना चाहिए साधु को, ब्राह्मण को, भगवान को, देवता को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम कराना नहीं चाहिए, ये कहा गया।
गुरु महाराज, महाराज
कौन बोल रहे हैं?
भागवत के शुरुआत में दिया है कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, किंतु ऐसा क्यों दिखाई देता है इस अध्याय में कि ज्ञान और वैराग्य प्रवीण दिखाई पड़ते हैं इस अध्याय में?
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीन कहा गया। तो भक्ति करने से ज्ञान हो जाता है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की माँ है। अगर हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, वैराग्य भी अपने आप होगा। ये भक्ति का सहज स्वरूप है, तो अलग से ज्ञान वैराग्य करना चाहिए, इसको शास्त्र नहीं कहता है। यहां पर ये नहीं सिखाया गया है, भगवान सिखा रहे थे ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर ज्ञानी का आचरण कैसा होना चाहिए और वैराग्य हो जाने पर कैसा होना चाहिए और भक्त होने पर कैसा होना चाहिए, इसी को बताया।
महाराज जी, महाराज जी, आपने कहा कि जो गृहस्थ जीवन है इसमें जो सिद्धि है यही है कि धन की प्राप्ति। तो मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और धीरे धीरे उसको धन की प्राप्ति होती है, तो वो किस तरह से स्वीकारे और किस तरह से उसको ठुकराए?
तो ये परमहंसों के धर्म को भगवान ने बताया, परमहंसों को चाहिए कि वे, सन्यासियों को चाहिए कि वे धन आदि आवश्यकता से ज्यादा संग्रह न करें। गृहस्थों के धर्म को तो उन्होंने बताया है, गृहस्थ को धन का संचय करना चाहिए, वह भी जितना जरूरी है उतना। बहुत अधिक धन पर ही पड़ जाए तो उसको समय भी ना मिले भक्ति करने का, ऐसा नहीं, लेकिन वो धन आगे के लिए रख सकता है, बच्चे और पत्नी हैं तो उनका योगक्षेम वहन करना एक कर्तव्य है गृहस्थ का। तो मैं ये तो नहीं कहा गृहस्थों को केवल शरीर मात्र रखना चाहिए और कुछ नहीं, सन्यासियों को ऐसा होना चाहिए, जितना हो सके उतना त्याग होना चाहिए। धीरे धीरे लगेगा, पहले एक घंटा दो घंटा अगर लगा तो वो सफलता है। यदि मान लीजिए आप एक घंटा जप किए तो एक घंटे तक जिह्वा इंगेज रहे भगवान का नाम लेने में और शरीर प्रणाम करने में रहा, तो घंटा घंटा मिला करके ही सप्ताह बनेगा, फिर महीना बनेगा और कई महीना मिला करके वर्ष बनता है। तो पहले पहले मिनट को सफल करना, घंटा को, सप्ताह को, महीने को, तो अगर एक घंटा ठीक कर रहे हैं तब 24 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन चिंता इसकी नहीं करनी चाहिए कि 24 घंटा मेरा भजन हो। जो नियम बनाया गया है, जैसे मंदिर का नियम है, इतने बजे उठ जाना है, तो और एक घंटा जप करना है या भगवान को देखना है, दर्शन करना है, तो यदि आप 5 मिनट भी भगवान को देखे खूब ध्यान से, तो धीरे धीरे वो मिनट बढ़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में एक आग कायम रखने के लिए लोग अंगीठी रखते हैं और आग थोड़ी रहती है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा करके तेज करते हैं। तो आग होनी चाहिए, आग है तो बढ़ सकती है। और थोड़ा भजन कर रहे हैं नियम से, नियम पालन कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अनुराग से नियम पालन करना चाहिए। भगवान का दर्शन, प्रणाम, जप, तब एक दिन बढ़ते बढ़ते लालसा बढ़ जाएगी, तब 24 घंटा होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अब भक्त परेशान हो जाता है कि हमको इतना स्मरण क्यों आ रहा है, मैं चाहता हूं कि कम स्मरण आवे, लेकिन वह स्मरण छूटेगा ही नहीं। भक्त चाहेगा कि यह स्मरण हमको छोड़ दे, हम कुछ काम करेंगे घर का, लेकिन वो हटता ही नहीं है। ए छार रसना मोर हैल की बान, जार नाम न लैबो लय तार नाम। ब्रज की गोपी कह रही है कि हमारी जीभ हमारे विपरीत हो गई है, देखो मैं चाहती हूं कि मैं कृष्ण का नाम न लूं, लेकिन ये कृष्ण का ही नाम बोलती रहती है, अब क्या करूं। जार नाम न लैबो लय तार नाम, तो वो तो अवस्था बहुत दूर है। कृष्ण का स्मरण होना है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, हमारा स्वरूप है। अब लालसा होगी बढ़ाने की इसको, तो बढ़ेगी तब न जब पहले मिनट, घंटा, सप्ताह ये सब बढ़ाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि 24 घंटा भजन हो। ये निद्रा कम आवे, भोजन कम हो, ये कटौती करते करते और जितना टाइम कटे नींद में उतना टाइम भजन में बढ़े। 6 घंटा सोते हैं तो 6 घंटा में से मान लीजिए आधा घंटा काट लिए सोना, आधा घंटा भजन बढ़े, तो 1 घंटा काट लेंगे, इस तरह धीरे धीरे भजन बढ़ेगा। भजन बढ़ेगा और भोजन कम होगा और निद्रा कम होगी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ये सोचते हैं कि हम छत पर कैसे चढ़ जाएं, तो चढ़ेंगे तो पहले स्टेप से थोड़ा थोड़ा ना, और थोड़ा थोड़ा चढ़ते चढ़ते बहुत चढ़ जाएंगे। यही विधि है। तो दृढ़ता आएगी वैसे ना, हम सीढ़ी पर चढ़ने का भी दम नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन सब सब मिलाकर के आलस्य से मन नहीं लगता है, कहीं न कहीं तो मन लगता ही है, प्रमाद और आलस्य इससे बचना चाहिए। पाप पहले का हो गया है कि उसके वेग को भी कम करने के लिए जरूरी है थोड़ा थोड़ा भजन। जो भी जप करे, दो माला जप किए, चार माला, आठ माला, जो भी, खूब मन लगा करके उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे दृढ़ावर्ता का ये अर्थ है कि जो भी भक्ति कर रहे हैं उसको अच्छा अच्छी प्रकार से करें। तो नाम जप करना है तो नाम जप में जो जितना स्वर रहना चाहिए, जितना ऊंचा बोलना है उतना बोलना, जितना कंटिन्यूअस जप के समय में कभी फोन मत उठाइए, फोन सुनिए मत, या किसी से बातचीत नहीं। पहले इसके लिए चिंता होनी चाहिए कि हमारा जप अच्छा से कैसे होगा। शास्त्र विरुद्ध काम करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, नरक आदि मिलेगा। खुद भगवान ने जो आचरण किया है उसका कोई अनुगमन करता, अनुकरण करता है तो उसे भी नरक की प्राप्ति होती है। अब भगवान ऋषभ देव के देखा देखी धोती खोल करके और घूमना चालू करें तो लोग मारेंगे कि नहीं, ढेला मारेंगे, थूकेंगे, कहां से आ गए हैं। ऐसे लोग कभी कभी देखे जाते घूमते हुए, तो वो सब नरक में जाएंगे निश्चित। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। भगवान ऋषभ देव भगवान की भक्ति करने के लिए कहे हैं ये उपदेश में, यह नहीं कहे कि हमारे समान तुम भी रोड में और मार्केट में घुमा करो। भक्तों में ही वास्तव में परमहंस होते हैं। परमहंस बिना भक्त हुए नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी भक्त को योगी कह दिया जाता है, तस्मा योगी भवार्जुना। भगवान भी गीता में कहे हैं अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो। तो आपका मैं प्रश्न समझा नहीं ठीक से। भक्त लोग तो अपने में दास टाइटल लिखते हैं, ये परमहंस ये सब कभी नहीं लिखते। सबसे बड़ी पदवी है दास, सबसे ऊंची पदवी है दास, भगवान का नाम और उसके बाद दास। तो भगवान का दास यही हमारी ऊंचाई है। तो भक्त लोग क्यों लिखेंगे, योगी या परमहंस अपने में क्यों लिखेंगे? लेकिन वो तो भगवान भी कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतोय माम समय युक्त तम मत। योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सबसे ऊंचा योगी है जो अपने मन को मुझ में लगा करके मेरा भजन करता है। तो आप क्या चाहते हैं, भक्त लिखे कि मैं परमहंस हूं या मैं सबसे बड़ा योगी हूं? ये तो आत्मपात हुआ, अधापात। एक बार नारद जी ने पूछा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, कि आप किसका ध्यान करते हैं? आपको तो लोग जगत गुरु कहते हैं, आप ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं विश्व को। तो ब्रह्मा जी ऐसे कहने वाले लोगों को गाली देते हैं, कहते हैं भगवान की माया को नमस्कार है जिनकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी भी जगत गुरु टाइटल स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा जी जबकि भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं, शिष्य हैं, लेकिन जगत गुरु वे अपने नाम में नहीं लगाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो केवल कृष्ण हैं। ये सब टाइटल परमहंस या वीतराग या संत शिरोमणि, ये सब पाखंडियों के टाइटल हैं। भक्त तो इसी में गौरव मानता है कि हमको दास कहा जाए, भगवान का दास बन करके सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। जमराज जी भी इस टाइटल से डरते हैं, जम डर प्यो जब दास कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जमराज जी जिसके नाम में दास लगता है उसे डर जाते हैं, और जिसके नाम में परमहंस या भगवान भी लगा रहता है उसकी खूब मरम्मत करते हैं। खूब मरवाते हैं अपने दूतों से, कहते हैं इस साले को मारो, ये भगवान बनता था, परमहंस बनता था, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो खूब पिटवाते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण।